थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से योना नबी की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक का मुख्य विषय है परमेश्वर की दया और इसके लेखक हैं स्वयं योना। श्रोताओ, योना तो इस पुस्तक में लिखित वर्णन का मुख्य पात्र है। योना की पुस्तक की संरचना सुडौल एवं प्रभावशाली रूप में है। इस पुस्तक की कथा दो समांतर घटना चक्रों पर चलती है जिसमें तुलना एवं विरोधाभास विद्यमान है। तो आइए श्रोताओं, अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, सोचा था मैंने यह जग मेरा, सोचा था मैंने यह जग मेरा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, धोखा सा कोई न सहारा, धोखा सा कोई न सहारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, बदला जीवन लहू से मेरा, बदला जीवन लहू से मेरा, बड़ा आनंद तूने कहा था, बड़ा आनंद तूने कहा था, पाप क्षमा हुआ मेरा, पाप क्षमा हुआ तेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, क्रूस उठाकर चलता रहूंगा, क्रूस उठाकर चलता रहूंगा, पाया मैंने अनमोल धन को, पाया मैंने अनमोल धन को, है जो यीशु से भरा, है जो यीशु से भरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज हम एक नए पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों में हम सब ओबद्याह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे और आज हम योना नबी की पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और आज हम इसके पृष्ठभूमि को और इसके परिचय को देखेंगे। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे, ताकि जब हम इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब से बोले और बातचीत करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। पिछले दिनों आपने हम सबों को ओबद्याह की पुस्तक से अध्ययन करने का मौका दिया, हमें सिखाया और समझाया। आज जब हम एक नए पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ कर रहे हैं, योना नबी की पुस्तक से, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों से आप बोले और बातचीत करें, ताकि हम योना नबी के द्वारा अपने जीवन में उन बातों को सीख सकें जिसे आप हमें सिखाना और बताना चाहते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस अध्ययन पर हम आपकी आशीष मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए योना नबी की पुस्तक के परिचय और उसके पृष्ठभूमि को देखेंगे। योना की पुस्तक बाइबल में एक ऐसी पुस्तक है जो अन्य किसी भी पुस्तक की तुलना में सबसे अधिक आलोचना का पात्र रही है। दुर्भाग्य से अनेक मसीही जन इस पुस्तक पर कलंक लगाते हैं। वे वास्तव में जानते नहीं कि वे संशयवादियों के हाथ का खिलौना बनकर पाखंडी बन रहे हैं। वे योना की कहानी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, आपको पता होगा युद्ध की एक नीति है कि शत्रु के दुर्बल स्थान को खोजकर वहां पर आक्रमण किया जाए। इस आधार पर आलोचकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि योना की पुस्तक परमेश्वर के इतिहास का दुर्बल स्थान है। इस पुस्तक पर बैरी ने सबसे प्रबल वार किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि विश्वासी इसे धर्मशास्त्र की 66 पुस्तकों में सबसे कम महत्व देते हैं। परंतु यदि यह पुस्तक हट जाए तो बाइबल की श्रृंखला टूट जाएगी। क्या योना की पुस्तक बाइबल का एक दुर्बल भाग है? यदि हम आलोचकों की मूर्खतापूर्ण व्याख्या को मानें, आलोचना का गीला खंड तो वास्तव में यूनानी बाइबल के अनुवादों में प्रतिपादित किया गया है। आज भी मुक्त विचारक कहते हैं कि यह तो मात्र एक रूप कथा है, यह सत्य नहीं है, और कई लोग ऐसा ही कहते हैं। मेरे प्रियो, मैं योना की पुस्तक के विषय कुछ अनोखे वाद आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आइए हम देखें। पहला है, कुछ आलोचक प्रमाण बिना कहते हैं कि योना सारपत नगर की विधवा का पुत्र था। दूसरा, कुछ का कहना है कि योना की कहानी वास्तव में योना के स्वप्न का वर्णन है जो उसने आंधी के समय जहाज में देखा था। और अब तीसरा है, कुछ लोग योना की पुस्तक को फिनेके की दंत कथा, हरक्यूलस और समुद्री दानव का दूसरा रूप मानते हैं, जबकि दोनों में कहीं भी समानता नहीं है। चौथी बात, कुछ का कहना है कि योना का जहाज टूट गया था और किसी और जहाज ने योना को बचाया जिसके सामने मछली का मुंह बना हुआ था। मैं यह मान सकता हूं, परंतु जब योना को होश आया तो वह अपने आप को जहाज पर पाता है, मछली के पेट में नहीं, जबकि ऐसा नहीं होना था। अब हम पांचवी बात देखते हैं। कुछ का कहना है कि आंधी में जहाज के टूटने पर एक मृतक मछली वहां थी और योना ने उसमें शरण ली। इस पुस्तक के अध्ययन के बाद मैं कहूंगा कि कहानी मृतक मछली और जीवित योना की नहीं, जीवित मछली और मृतक योना की थी। मेरे प्रियो, इस प्रकार मुक्त विचारकों के अनुसार योना एक रूप कथा है जो परियों की कहानी जैसी है। अतः उनकी व्याख्याओं के प्रति योना की प्रतिक्रिया देखना अति रोचक बात होगी। अतः हम इन व्याख्याओं को निराधार मानते हैं और योना को एक ऐतिहासिक चरित्र मानेंगे। यह पुस्तक एक सत्य कथा है। जी हाँ, मैं आपसे कहता हूं कि यह पुस्तक एक सत्य कथा है और इसका संदेश आज के कठिन समय में भी प्रासंगिक है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, यहूदा के राजा योआस के पुत्र अमस्याह के राज्य के 15वें वर्ष में इसराइल के राजा यहोआस का पुत्र यारोबाम शोमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। मेरी जहां तक जानकारी है कि यारोबाम द्वितीय के राज पर किसी ने संदेह व्यक्त नहीं किया है कि उसने 41 वर्ष इसराइल पर राज्य किया। अब आगे उसके विषय में लिखा है दूसरे राजा उसके 14 अध्याय और उसके 24 और 25 पद में, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप करवाया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। उसने इसराइल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों की त्यों कर दी, जैसा कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास गथेपेरवासी योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। यारोबाम था, इसराइल भी था और हमात की घाटी भी थी, और तब हम देखते हैं कि योना भी था। मेरे प्रियो, अब एक तर्क यह भी हो सकता है कि यह दूसरा योना भविष्यद्वक्ता था, हो सकता है, परंतु दोनों का पिता एक ही हो, अमित्तै, और दोनों ही भविष्यद्वक्ता हो। साथ ही योना एक सामान्य भी नहीं था। बाइबल में योना नाम 3 बार ही आया है, इस पुस्तक में, दूसरे राजाओं में और नए नियम में, और तीनों का संदर्भ एक ही ऐतिहासिक योना से है, न कि किसी और योना से। यदि हम इसी तर्क को उबद्याह के प्रासंगिक बनाएं, तो उसे आलोचक स्वीकार करते हैं, जबकि वह भी एक ही नाम है। फिर आलोचक योना को अस्वीकार क्यों करते हैं? क्योंकि वे उस चमत्कार को मानना नहीं चाहते हैं, जैसा कि आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों को सुनने और जानने और देखने के बाद भी नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। अब योना के विषय सबसे बड़े विद्वान प्रभु यीशु की गवाही को आप सुने, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 30 पद में लिखा है, जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। और तब हम मती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 39 और 41 पद में, अर्थात 39 से 41 पद में प्रभु यीशु के द्वारा कहे गए बातों को देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु ने कहा था, इस युग के बुरे और व्यभिचार लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। जी हां, यहां वह है जो योना से भी बड़ा है, परंतु लोग उसकी नहीं सुनते। योना पर संदेह करने का अर्थ है प्रभु यीशु पर संदेह करना। मुक्त विचारकों से यह सुनना बड़ा विचित्र लगता है कि प्रभु यीशु सबसे महान शिक्षक था। यदि प्रभु यीशु सबसे महान शिक्षक है तो उसकी बात सच है कि योना था और वह जल जंतु के पेट में रहा था। मेरे प्रियो, मैं इस विवाद को सर विंस्टन चर्चिल के कथन से समाप्त करना चाहता हूं, जो उन्होंने धर्मशास्त्र की प्रेरणा के विषय कहे थे। उन्होंने कहा, हम मूसा के विषय सब ज्ञानवान एवं श्रम खोजी कथाओं को निंदा के साथ अस्वीकार करते हैं, परंतु याचकगण तथा मनुष्य ने सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक आदेशों का श्रेय उसी को दिया। हम यह मानते हैं कि विज्ञान तथा तर्क सम्मत विचार बाइबल की कहानी को ज्यों का त्यों स्वीकार करने में ही संतोष पाते हैं, और सबसे महान मानव का पदार्पण, जिसका ज्ञान मानव इतिहास में समझ से परे है, उसे पहचानते हैं। हम प्रोफेसर ग्रेडग्राइंड और डॉक्टर ड्री एस डस्ट के ग्रंथों से प्रभावित नहीं होते हैं। हम निश्चय जाने कि सब कुछ वैसे ही हुआ है जैसे पवित्र लेखों में व्यक्त है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के भक्तों ने इस वचन को लिखा है। बिना परमेश्वर की प्रेरणा की कोई भी बातें लिखी नहीं गई। यदि ऐसा कुछ होता तो वे पहले ही योना की पुस्तक को इसमें शामिल नहीं करते, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में होकर उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। मेरे प्रियो, योना भविष्यद्वक्ता तो था, परंतु यह पुस्तक भविष्यद्वाणी नहीं है। यह योना के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का वृतांत है। इस वृतांत में 2 महान संदेश हैं। यहां महाक्लेश में परमेश्वर द्वारा अपने 144,000 लोगों को सुरक्षित रखने का वर्णन मिलता है, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं। उसका यह लघु चित्रण है। इसमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की शिक्षा भी है। यह पुस्तक वास्तव में पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की पुस्तक है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था कि जिस प्रकार योना निनवे वासियों के लिए एक चिन्ह ठहरा था, उसी प्रकार वह अर्थात प्रभु यीशु भी अपने युग के मनुष्यों के लिए मृतकोत्थान का चिन्ह ठहरेगा। मेरे मित्रों, हम यहां पर देख रहे हैं कि योना की पुस्तक एक मछली की कहानी नहीं है, जो उन लोगों को आशांत करती है जो कहते हैं कि इसे मानना असंभव है। यह कहानी एक पुनर्जीवित मनुष्य की है, एक सिंहासन की है जिसके मध्य एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है। यह मेमना पुनर्जीवित है और एक दिन मसीह का त्याग करने वाला संसार पुकार कर कहेगा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 6 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा ले। छिट्रान वेशी आलोचकों के कारण एक छोटी सी पुस्तक की साहित्यिक उत्कृष्टता छिप जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिक आलोचना करके इसके महत्व को घटाने की कोशिश करते हैं। एक महान साहित्यिक आलोचक ने कहा है, योना ऐसी लघु लेख में सबसे सुंदर कहानी है। अतः स्मरण रखें, हमारे समक्ष मछली की कहानी नहीं, एक साहित्यिक नगीना है, एक बहुमूल्य रत्न है जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया ताकि हम योना के द्वारा सीख सकें। मेरे प्रियो, मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि इस कहानी में मछली न तो नायक है और न ही खलनायक है। यद्यपि इस कहानी में मछली ने अपनी भूमिका निभाई है, यह कहानी मछली पर आधारित नहीं है। बाइबल की किसी भी पुस्तक को पढ़ते समय डॉक्टर कैम्बेल कहते हैं कि हमें आवश्यक और अप्रधान का ध्यान रखना चाहिए। योना की पुस्तक में मछली, रीढ़ का पेड़, पूर्वी हवा, नाव और निन्वे नगर आदि सब अप्रधान दृश्य हैं। यहां मुख्य बात है परमेश्वर और योना, परमेश्वर और मनुष्य। पुस्तक का विषय यही है। जी हां, इसलिए मुझे आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं। रूढ़िवादी विचारक योना की पुस्तक का लेखन काल 745 ईस्वी पूर्व से पहले का मानते हैं और कुछ विचारक इसे 860 ईस्वी पूर्व मानते हैं। मेरे विचार में इसका समय 800 से 775 ईस्वी पूर्व माने तो उचित होगा। इतिहास के ज्ञाताओं के अनुसार यह निमरोद द्वारा स्थापित निन्वे अपनी चरम सीमा पर था। वे विश्व शक्ति थे। उनका पतन 606 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि उसकी शहरपनाह 100 फुट ऊंची और 40 फुट चौड़ी थी। योना की पुस्तक छोटी होने के कारण यदा कदा बाइबल पढ़ने वाले इसे मात्र योना और मछली की घटना समझकर अनदेखा करते हैं। यह पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक ओबद्याह से मात्र 2 गुना बड़ी है। हमें इन भविष्यद्वक्ताओं को छोटे भविष्यद्वक्ता नहीं कहना चाहिए क्योंकि वे परमाणु बम के समान हैं। उनमें अतः सामर्थ और परमेश्वर की योजना निहित है। मेरे प्रियो, योना की पुस्तक में 6 विषय हैं जो इस पुस्तक को हमारे लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाते हैं, तो आइए हम इन्हें देखते हैं। पहला, पुराने नियम में यही एक पुस्तक है जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का संकेत देती है। मसीही विश्वास के सब धर्म सिद्धांत पुराने नियम की पुस्तकों में पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, निर्गमन की पुस्तक में मुक्ति का विचार है। मसीह यीशु के पास आने वाले पापी की पाप मुक्ति है। रूत की पुस्तक में मुक्ति का प्रेम पक्ष है। एस्तर की पुस्तक में ईश्वरीय विधान का रोमांच दिखाई देता है और अय्यूब की पुस्तक में मन फिराव की गाथा है। आप पुराने नियम में देखेंगे कि हमारे विश्वास के महान सिद्धांत विभिन्न पुस्तकों में व्यक्त हैं। योना की पुस्तक प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पूर्व चित्रण प्रस्तुत करती है और इसी कारण मैं इस पुस्तक को महान महत्व देता हूं। दूसरी बात हम देखते हैं, योना की पुस्तक की शिक्षा है कि उद्धार कर्मों पर आधारित नहीं है। ध्यान से सुने, उद्धार कर्मों पर आधारित नहीं है, उद्धार विश्वास के द्वारा है जो मन फिराव लाता है। रूढ़िवादी यहूदी इस पुस्तक को पश्चाताप दिवस योम किप्पुर के दिन पढ़ते हैं। परमेश्वर के निकट आने का मार्ग धार्मिकता के कामों से नहीं, प्रभु द्वारा प्रतिस्थानक बलि के लहू से है। योना के पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण उक्ति अध्याय 2:9 में है, मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलि चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है, उसने हमारे उद्धार का महान निर्माण किया है। और अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरी बात को देखते हैं। इस पुस्तक का सबसे महान तीसरा उद्देश्य है परमेश्वर का अनुग्रहकारी उद्देश्य निराश ना होगा। योना नीनवे जाने से संकोच कर रहा था, परंतु परमेश्वर ने अपना संदेश नीनवे को भेजा, उस शहर में भेजा। इस पुस्तक में रोचक बात तो यह है कि योना ही को नीनवे में परमेश्वर का गवाह बनना पड़ा, वह वहां भेजा गया। मेरे प्रियो, यहां पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि नीनवे शहर में योना गया, और तब हम आगे देखेंगे कि वह किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को वहां पर प्रचार किया। परंतु यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि अगले अध्ययन में जब हम मिलेंगे तो और भी आगे की बातों को हम लोग सीखेंगे, और निश्चय जाने कि योना की पुस्तक के द्वारा हम बहुत सी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हैं। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
आंख जब मेरी बंद हो जाए, आंख जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, पहुँचूं मैं स्वर्गीय वतन में, पहुँचूं मैं स्वर्गीय वतन में, यह गीत है अब मेरा, हाँ यह गीत है अब मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे।